الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم لوگ سورہ رحمان سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ظاہر ہے بہت ہی زیادہ خصوصیات ہیں اس سورت کی. اس میں ٹوٹل 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. یہ مدنی سورت ہے آف کورس، اور اس میں فرسٹ بالکل سورت کے شروع میں ہی ہم نے دیکھا کہ الرحمن کا لفظ آیا، تو اسی وجہ سے اسے سورہ رحمان کہتے ہیں. اسے اس کا ایک دوسرا نام عروس القرآن، یعنی کہ قرآن کی زینت یا قرآن کا زیور یا اس طرح کا بھی ٹرانسلیشن بنتی ہے. اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے ایک مرفوع روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ہر چیز کی ایک عروس، یعنی کہ اس کی دلہن، یعنی کہ برائڈ یا زینت یا بیوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی جو عروس ہے وہ سورہ رحمان ہے. تو بالکل اس کی فضیلت اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور سب سے پہلے یہ الرحمن علم القرآن، تو ظاہر ہے پہلی نعمت جو ہے وہ اللہ نے قرآن ہی ہمارے لیے اتاری. سب سے بڑی بات پہلے بتائی کہ الرحمن اللہ کی صفت، یعنی کہ اگر وہ رحمان ہی نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی آگے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی انسان جو بھی ہوگا وہ گنہگار ہی ہوگا، تو اور اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر کون ان کے گناہ معاف کرتا. تو پہلی بالکل فرسٹ کیٹیگورک صفت ہی بتا دی، کیونکہ اللہ رحمان ہے تو یہی آگے ایک ڈائیلاگ اور ایک کانورسیشن کا سلسلہ بن سکتا ہے. پھر آگے علام القرآن، جو اس کیوں رحمان ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے ہمیں قرآن عطا کیا، یہ اللہ نے بتایا. تو یہ قرآن اٹ سیلف اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں وہ گائیڈنس ہمیں وہ دے دی جو ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کے اور آگے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے حق اور یعنی صراط مستقیم پر چڑھ سکتے ہیں. پھر آن ورڈز اس صورت میں بہت ساری جو یونیورس کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں جو ساری ان کا ذکر آ رہا ہے. ون نجم و شجر یسجدان و سما رفع و المیزان، ان ساری آیتوں میں دیکھتے ہیں آگے تقریباً 20-22 آیتوں میں سورج چاند اور آف کورس ستارے اینڈ سٹارز اینڈ ٹریز اینڈ زمین، جس سے مخلوق کے لیے ایک سیٹلمنٹ کی جگہ بنا دیا، اور پھر آگے پانی اور ہر چیز کے یو نو موتی اور شیل اور ہر چیز کا تذکرہ. اللہ کی جتنی نعمتیں نظر آنے والی انسان کے لیے تھی، پاسبلی ان میں سے اکثر کافیوں کا یہاں پہ ذکر اللہ نے اس صورت میں فرمایا. اور پھر آگے آیت نمبر 35 پہ اگر ہم دیکھیں جا کے، تو یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، یہاں پہ اب دیکھیں تو ایک اخروی عذاب کی کچھ آیتیں ہمیں ملتی ہیں آیت نمبر 35 سے آن ورڈز 44 تک، کہ وہ آگ کے شعلے اور دھواں جس میں سانس لینا دوبر ہو جائے، اور ان کے پھر جہنم کے تذکرہ اور یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 46 سے اخروی جو اٹرنل نعمتیں ہیں، یعنی کہ جو جنت اور جو ان دی اینڈ ہمیں ملے گا ایک مسلمان کو ایک مومن کو، اس کے تذکرہ پورا ڈیٹیل میں پھر آگے تقریباً 76 آیت تک یہ چلتا ہے. ایک نوٹ وردی چیز جو اس صورت میں آف کورس وہ 31 مرتبہ فبی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان، یہ آیت کا تکرار یعنی کہ ریپٹیشن نظر آتا ہے، وچ از پاسبلی بیکاز شروع میں اللہ نے جو اپنے اتنی ساری جو سائنز اور نعمتوں اور ان کا تذکرہ پورا کیا، تو پھر ہر جگہ پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی فرسٹ کیٹیگری میں جو جب اللہ نے اپنی تخلیق کے جو ڈفرینٹ ایک جو یونیکنیس ہے اس کا تذکرہ جب فرمایا کچھ آیتوں میں، تو 8 دفعہ فبی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان آیا. اور پھر دین وی سو کہ جب جہنم اور عذاب والوں کا تذکرہ آیا تھا جیسے ہم نے کہا تھا آیت 35 سے آنورڈس، تو وہاں پہ تقریباً 7 دفعہ فبی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان آتا ہے. تو اگر اس میں پرابلی پتہ نہیں کوئی علماء یہ ایک اوپینین دیتے ہیں کہ جہنم کے بھی کیونکہ 7 ہی دروازے ہیں روایت سے پتہ چلتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں. تو ان پرابلی دیٹ کانٹیکٹس یہاں پہ ایک سائن اللہ نے دینا چاہا، واللہ عالم. لیکن یہ بھی ایک محدثی مفسرین نے نقطہ یہاں پہ نوٹ کیا ہے. फिर आखिर में ज़ाहिर है एंड में जब फाइनली उन टोटल पहले जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र, और फिर अगर हम नोट करते हैं तो जो आखिर में फाइनली जन्नत एंड के जो बागात हैं, जो ग्रीनरी है या जो भी उसकी जन्नत की नेमतें हैं, उसके बाद फिर 8 दफ़ा में मिलता है। तो ये टोटल 31 मरतबा बहरहाल इसमें ही आता है। और बाज़ लोग खैर ये इसमें कोई कभी सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर जो अज़ाब है उसके बारे में आयत फ़बी अला रब को मातु का ज़िबान, तो अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो अज़ाब कौन सी नेमत है। तो ज़ाहिर है ये तो अल्लाह का अदल का पूरा कैसे होता अगर वह अज़ाब के बारे में पहले से वार्निंग ना देता। तो इसमें भी अल्लाह की ये नेमत ही है कि उसने पहले से हमें वार्निंग दे दी कि ये होने वाला है, इससे बचाओ और इससे आंखें खोलो। तो ये अल्लाह का रहमान होना और ये अल्लाह की नेमतों में से ही है। और कि जब वो फाइनल फेट आ रहा है उससे पहले पहले ही हमें उससे वार्न कर दिया जाए, तो ये अल्लाह की एक अपनी नेमत ही है। और फिर ज़ाहिर है उस जो आगे फाइनली इन दी एंड सूरत की यही बताया जा रहा है कि सब कुछ उसी रहमान की जो है उसका रहमत का नतीजा है। और तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, वही हाईएस्ट है। इस तबारका पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सूरह मुल्क में इसकी बात चले, लेकिन यहाँ पे बहरहाल हम सूरह वाकया स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑर्डर के एतबार से 56 सूरत है कुरान पाक की, और नाजिल होने वाली ये 46 सूरत बनती है। और इसमें टोट ये भी मक्की सूरत है, और इसमें टोटल 96 आयात और 3 रुकू हैं। बिल्कुल आयत ये सूरत शुरू ही इज़ा वक़ात अल वाक़िया, इस लफ्ज़ वाक़िया से होती है, तो इसलिए इस नस्बत से इसे सूरह वाक़िया कहा जाता है। इसकी आगे हम देखें अगर तो इसे सूरह गिना भी कहा जाता है, बाज़ रिवायात से पता चलता है। हज़रत इब्ने स्पेशली इफ़ यू नोट के हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत है, जहाँ वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी जो कॉन्वर्सेशन चली थी, एनी हाउ इट्स अ लॉन्ग रिवायत, मगर वहाँ पे उन्होंने फरमाया जो शख्स हर रात सूरह वाकिया पढ़ेगा उसे कभी भी फाका का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में तो पूरा एक लेक्चर भी ज़ाहिर ऑफ कोर्स डिटेल्स में उनकी शान में कम है। तो वो अगर ये फरमा रहे हैं कि सूरह वाकिया से कभी नहीं होगा, तो इस पे यकीनन इंशाल्लाह हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। और फिर ये आगे सूरत में चलते हैं तो कयामत कायम होती है, तो क्या होगा, ज़मीन में जलजला बरपा हो जाएगा और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, इंसान 3 डिफरेंट असहाबुल यमीनी मा असहाबुल यमीन असहाबुल शिमाली मा असहाबुल शिमाल, ये मशअमत मा असहाबुल मशअमा, और फिर व सबिकून सबिकून, ये 3 डिफरेंट ग्रो यानी कि जमातें यानी कि ग्रुप्स बन जाएंगे। फर्स्ट असहाबुल यमीन विल बी जो जन्नती लोग होंगे, और जो असहाबुल शिमाल यानी कि दोजखी लोग, एंड जो सबिकून इसमें ख़ास मोमिनीन जिनके जो नेक काम होंगे वो उसमें स्पेशल एक ऑनर के साथ दूसरों से आगे जा चुके होंगे। और टोटल इन्हीं तीनों के बारे में ये सब आयतों में बात भी चलती है, और टोटल 56 आयत तक जाकर इन्हीं तीनों का इसमें तस्करा ही चलता है। तीनों किस्म के लोग, जन्नती भी और दोजखी भी, और जो मोमिन यानी कि असल आगे मकाम में ऊपर वाले मुसलमान। इसके बाद अगर हम गौर करें तो अल्लाह की जो कमाल है कुदरत की, उसकी थोड़ी सी बात यहाँ पे ज़ाहिर है इस सूरत में मिलती है। और ख़ास तौर से आगे आयत नंबर 76 पे अगर जाके देखें तो अल्लाह ने एक कसम यहाँ पे खाई, व इन्नहु लक़सम लौ तअलमून अज़ीम, कि ये एक अजीम कसम है। इसके बारे में ख़ास तौर से क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़ला अक़सिमु बिमवाक़िअ नुजूम, अल्लाह ने सितारों की कसम खाई है। और फिर अल्लाह ने ये फरमाया कि ये बहुत बड़ी कसम है, सितारों की कसम खाना। तो इसमें एक थोड़ा सा उलमा ने थोड़ा इल्मी एक पॉइंट लिखा है कि ज़ाहिर है सितारों की कसम खाने का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपनी एक बड़ाई शान बताई कि यूनिवर्स में जब एक्सपैंड करके अपनी आँख को देखो और टेलीस्कोप से, तो आज तो साइंटिस्ट की सिर्फ जो रीच नोन रीच नज़र जहाँ तक पहुँची है इनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टेलीस्कोप से, तो वो ऑलरेडी कहते हैं कि रफली 500 मिलियन गैलेक्सीज आर रोमिंग अराउंड इन दिस यूनिवर्स, और पता नहीं उससे ज़्यादा और भी हैं, वो तो कहते हैं यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। और फिर ये कि तकरीबन 100,000 मिलियन या उससे भी प्रॉब्ली मोर और लेस स्टार्स और एवरी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इन इट्स ओन एक्सिस, एंड देन फिर उसके साथ साथ रिवॉल्विंग अराउंड इन थ्रू ऑन अनदर एक्सेस, और फिर आपस में कोलिजन नहीं है कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन सिर्फ दुनिया को देख लें तो ये 1000 माइल्स पर आर की स्पीड से जा रही है और रोटेट आगे घूम रही है, और सूरज को देखें तो 600,000 माइल्स पर आर की स्पीड से वो गर्दिश कर रहा है अपने उसमें एक्सेस में। और फिर ये नॉर्मल भी स्टार्स वगैरह के बारे में साइंटिस्ट जो कहते हैं कि 8 मील फी सेकेंड पर सेकेंड, या इट गोज़ अप एज हाई एज 33 माइल्स पर सेकेंड, या इवन देर आर स्टार्स रिवॉल्विंग एट 84 माइल्स पर सेकेंड की स्पीड से। तो जाहिर है ये इन इट सेल्फ इतना एक बड़ा निज़ाम है जो बिल्कुल अपने एक पैटर्न पे चल रहा है और इधर से उधर नहीं होता। ये इन इट सेल्फ जाहिर है ये एक बहुत बड़ी कसम अल्लाह ने इसे खुद इसी लिए फरमाया शायद। और ज़ाहिर है इन दोनों में सितारों के ज़रिए भी, जैसे एक और नुक्ता जो उलमा लिखते हैं कि जो डिफरेंट वेज होते हैं, रास्ते होते हैं, या इस तरह की कहीं घूम जाते हैं जो फिशरमैन और फार्मर्स और नेवी के, और या फिर इवन एयरप्लेन्स के अंदर, तो ये लोग स्टार्स से अपना रास्ता कभी कभार, इनको एस्ट्रोनॉमी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है कि उससे लोकेट करें। एंड इसीलिए नस्बत से कुरान भी रोशनी एक दिखाता है हम सबको और हमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए गाइडेंस देता है। तो उसी प्रॉब्लम नस्बत से इन दोनों का बिल्कुल साइमल्टेनियस एक आपस में कॉन्सेप्ट शायद नज़र आता है। यहाँ से आगे हम सूरह हदीद स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑर्डर के अतबार से 57 सूरत कुरान पाक की और नाजिल होने वाली 94 सूरत है। इसमें 29 आयात और 4 रुकू हैं। और इस सूरत को ज़ाहिर है इसमें आगे आयत नंबर 25 में हम देखेंगे वंजलनल हदीद अफी बासिन शदीद, तो हदीद लफ्ज़ आया, हदीद कहते हैं स्टील को, लोहे को, तो उस स्टील का जिक्र आता है तो इस आयत में, तो इसीलिए यहाँ पे इसे सूरह हदीद उस नस्बत से कहा जाता है। और ज़ाहिर है अब अगर हम देखें तो फर्स्ट तो वही अल्लाह की शान और कुदरत और हर चीज़ का वो खालिक मालिक है, और उसकी तस्बीह वगैरह और इन आयात से हमें स्टार्टिंग मिलती है पूरी 5-6 आयतों में। और फिर उसके बाद सेकंड एक जो हमें आयत नंबर 10 पे जाके सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट या वो नज़र आता है सूरत में कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और जो दीन की जो यानी सरबुलंदी है या उसके लिए यू नो फॉर द बेनिफिट ऑफ द दीन वो अपना माल खर्च करते हैं, तो उनके बारे में कि मिनकु मन अनफका मिन कबल फतहि व कातला उलाइका आज़मु दरजतम मिन अल्लज़ीन अनफकु मिन बादी व कुतिलु इला आखिर आयत, तो इनमें उनके बारे में बात चलती है ज़रा सी। और फर्दर ऑन ज़ाहिर है जो इस जो डोनेशन है जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है इसकी ज़ाहिर है एक फजीलत है, और उसी के बारे में यहाँ पे सारी बात चल रही है। आगे आयत नंबर 11 में ख़ास तौर से हम देखते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू वलहू अजरुन करीम, अल्लाह ने कहा कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ देगा, तो ज़ाहिर है अल्लाह को तो कर्ज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तो सूरत यही हो सकती है कि अल्लाह के किसी बंदे का कोई बेनिफिट हो जाए, तो यही सॉर्ट ऑफ अल्लाह को तो कहते हैं फ़युज़ाइफ़ लहू, उसका अजर मल्टीप्लाई करके हमें देगा, कहीं जगह आता है 10 दफ़ा देगा, कहीं आता है इवन 70 टाइम्स देगा बाज जो नेकियों का अजर होता है, तो उसके बारे में यहाँ से हमें कौन उसकी तरगीब एक फजीलत नज़र आती है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की। फिर आगे एंड में हम देखते हैं कि जो एंड आखरत की जो ज़िंदगी है वही ज़ाहिर है इमॉर्टल है, अन ख़त्म ना होने वाली है, और असल जो बंदे को तरगीब दी जा रही है वो यही कि आखरत उस मकसद के लिए यानी मरने से पहले पहले अपने मरने की तैयारी करो, और उसका मकसद यही है कि दौड़ लगाओ और उसमें आगे बढ़ने की नो और रेस इन दैट फील्ड, ताकि असल जो इटर्नल जो लाइफ है वो जन्नत मिले, और ज़ाहिर है उसके जो मल्टीप्लिकेशंस होंगे और जो सारे बेनिफिट्स होंगे उनके वादे जगह जगह अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाए हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट 28 पारे पे पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ सूरह मुजादला से स्टार्ट होता है, ऑर्डर के एतबार से 58 सूरत है और नाजिल होने वाली 105 नंबर पे नाजिल हुई, ये मदनी सूरत है और इसमें 22 आयात और 3 रुकूज़ हैं। बिल्कुल शुरू में हम देखते हैं कि क़द समी अल्लाह कौल लती तो जा दिलु का फ़ी ज़ौजिहा इला आखिर आयत, के अल्लाह ने एक ये ख़ातून का ज़िक्र हो रहा है जिसके जिनका नाम था गालबन जो रिवायात से पता चलता है खौला बिनते सालबा, رضی اللہ عنہ، یہ ان ایک کویری لے کے آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اپنے شوہر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی. یعنی وہ یہ تھا اس زمانے میں، یہ ایک جہالت کا رول تھا کہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم یو آر لائک مائی مدرز بیک، یا تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اس کی طلاق ہو جاتی تھی زمانۂ جہالت میں. ہی واز حرام فار دیٹ وومن اینڈ شی واز حرام فار دیٹ مین. مگر یہاں پہ اب وہ لے کے آئی کہ اس کے شوہر نے اسے یہ کہہ دیا ہے، تو کیا ہے؟ تو قد سمع اللہ قول التی تجا دلو کا، ایک اللہ نے پیار کے انداز میں تجا دلو کا کہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا یہ حکم یہاں پہ اتار دیا. وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، زمانہ جاہلیت کا یہ رہے گا یا اسلام یا شریعت اس حکم کو چینج کرے گی؟ اور ظاہر ہے کیا چینج، اور اس سے کفارہ دے کے اور کوئی ایسا حرج نہیں آتا، دوبارہ میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ایک جو وسپرنگ کی بات، کہ سرگوشی، یعنی کہ آپس میں کانوں میں جو وسپر ہوتا ہے، کہ اگر کہیں پہ تین لوگ ہوں تو اس میں سے دو آپس میں وسپرنگ نہ کریں، یہ بیڈ مینرز ہیں. اور اصل میں یہاں پہ اگر آیت نمبر 8-10 تک دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہود جو تھے، جیوز اس زمانے کے، ان کا تذکرہ یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ ان کی عادت تھی، جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جان بوجھ کے پریشان کرنے کے لیے صرف جسٹ ٹو ٹیز دیم آپس میں یو نو وسپرنگ اسٹارٹ ہو جاتے تھے، ایز اف سم تھنگ ویئرڈ از گوئنگ آن، سم تھنگ فش از گوئنگ آن، یا ایسے. یا وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے منہ بگاڑ کے، جیسے اپنا نا ورڈس چینج کر کے سلام کرتے تھے، اور کہتے تھے السلام علیکم، یعنی کہ ہلاکت ہو تمہاری، یا ابا قاسم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ کہتے تھے، اور ان سے انہیں جواب میں علیکم کہتے تھے کہ ہاں تمہارے لیے بھی. بہرحال اینی ہاؤ، تو پھر آگے آیت نمبر 9 میں ہم دیکھیں، اس میں تو بعض جیسے کچھ اچھی اگر نیک نیتی سے کوئی واقعی اللہ کے لیے کوئی اگر کسی نے وسپر کیا کسی کے کان میں، تو یہ کوئی ایسے حرام عمل نہیں ہے، لیکن ایک ادب کے خلاف ہے کہ بلا وجہ نہ کیا جائے. ایسا کسی نیکی کی نیت سے ہے اور اچھی انٹینٹ سے ہے تو دین اٹ از جائز آف کورس. پھر آگے مجلس کا ادب ہے کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ایک مجلس کی باتیں نہیں چل رہی، بلکہ ہر جو اچھی مجلس ہو وہاں کے اپنے اپنے جو رولز ہوتے ہیں انہیں فالو کرنا چاہیے. یہ ایک مستحب ہے، وچ اٹ از اے گڈ عمل، کوئی ایسے فرض یا واجب نہیں ہوتا، بٹ جو ایک جو مجلس کے آداب ہوتے ہیں، وٹ ایور دا رولز آر وین یو آر انوائٹیڈ ٹو اے پارٹی، جو اسٹیٹڈ رولز ہوں ان کو فالو کرنا ہی ایک مہمان کی رسپانسبلٹی ہے. آگے صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کا تذکرہ پھر اسی طرح میں ملتا ہے، آیت نمبر 14-19 میں بھی جا کے آگے، جو جیو سے بھی دوستی کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں سے قسمیں بھی کھاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اینڈ میں ظاہر ہے دی بیک آف ایوری ٹائم. اور پھر ظاہر ہے جو ان منافقوں کے ساتھ ساتھ پھر ایمان والوں کے لیے بھی چار ڈفرینٹ نعمتوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کہ پہلے وہ دلوں میں ایمان کو ان کے جما دیتے ہیں، ان کی پھر غیبی فرام بیونڈ مدد بھی آتی ہے، اور انہیں ظاہر آف کورس اینڈ میں جنت کا وعدہ بھی ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کے اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ بھی ان نعمتوں پر اللہ سے راضی ہیں. تو رضی جیسے کہ آیت نمبر بالکل لاسٹ 22 میں آیا، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو یہ صحابہ کے بارے میں آف کورس بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، کہ اللہ خود ان سے قرآن میں فرما رہا ہے وہ راضی ہو چکا. تو اس پہ اوپر ڈیبیٹ کا یا کوئی اس کا آئی تھنک اللہ نے دروازہ خود بند کر دیا. اس کے بعد سورہ حشر اسٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ آرڈر کے اعتبار سے 59 سورت ہے، اور نازل ہونے والی دس از دا 101 یعنی کہ 101 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی. یہ بھی مدنی سورت ہے یہ، اور اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں. بالکل سیکنڈ آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر الی آخر الآیت، کے حشر کا لفظ آتا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں. حشر کا مطلب یہ ہے کہ نکال دینا کہیں باہر، ایگزائل کر دینا یا مار بھگانا، سارٹ آف ان اے وے. اس یہاں پہ تذکرہ یہ ہو رہا ہے، ریزن از یہاں پہ جو ایڈریس ہو رہے ہیں، جو جیوز تھے دے ور لیونگ ان یثرب وچ از مدینہ، और उस ज़माने में इसे यसरिब कहा जाता था, डिफरेंट रिवायात से इसकी तस्दीक होती है। तो मदीना के बारे में बात हो रही है कि इन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो किले वगैरह और अपने पैलेसेस और ये बड़े बड़े बना लिए थे फोर्ट्रेसेस, और ज़ाहिर है ये लोग बहुत रिच थे क्योंकि इनका एक इंटरेस्ट बेस्ड सूदी निज़ाम के ये पाइनियर्स हैं और हमेशा से, और उसमें दे एक्सेल इन इट। तो उन्होंने सॉर्ट ऑफ वहाँ की अरब सरदारों को भी इस सेंस में ख़रीद लिया था, जैसे आज कल के निज़ाम में भी जो बैंकिंग सिस्टम है वो जिस तरह से एक रिबा निज़ाम सिस्टम के बेस के ऊपर दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को अपना ऑर्डर मानने पे मजबूर कर सकता है ऑफ कोर्स। तो जाहिर है ये इसी तरह का सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था, और इन्हें इनके इन्हें दो मर्तबा निकाला गया। फर्स्ट टाइम जब नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो बनू नज़ीर का वाक़या था, इन्हें फाइनली जब निकाला गया था यसरिब के इलाके से, और शाम के वो नॉर्थ सदर्न साइड्स पे रूम के उस वक्त, और फिर फाइनली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये खैबर से भी एग्ज़ाइल बाहर ऊपर कर दिए गए बिल्कुल सीरिया की तरफ, और पूरे इस हिजाज और यसरिब और सारे इलाके जितने भी नजद वगैरह के हैं ये सब से इन्हें बाहर निकाल दिया गया, जो आजकल कह सकते हैं सऊदी अरब का समॉड लाइक बनता है। इससे आगे जाहिर है ये इसमें एक बहुत सोचने वाली बात थी कि हाउ वॉज़ दैट पॉसिबल, ये ऐसे हो कैसे सकता था। जैसे कोई आज सोचे कि बड़े कोई बैंकर्स का पूरा एक सिस्टम को हम बाहर करके अपना सिस्टम लें, ऐसा कैसे हो सकता है, बट यहाँ इन बड़े बड़े बैंकर्स को इन्होंने पूरा निकाला उस ज़माने के बड़े बड़े जो थे, और ये इस तरह से इसका ख़ास तौर से कुरान में एक जो वाक़या मिलना, दिस इज़ मोस्ट डेफिनेटली साइन समथिंग टू पॉन्डर अपॉन कि ऐसा कैसे हुआ। और इस वाक़े से जो हुआ वो ये हुआ कि जो बनू नज़ीर को जब मदीना से एग्ज़ाइल करा नबी अलैहिस्सलाम ने, तो बग़ैर लड़े जो माल मिल गया इसे कहते हैं माल फ़ै, दिस इज़ नॉट माल गनीमत जो लड़ के किसी जंग में मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करना है, तो अल्लाह ने कैटेगोरिकली बता दिया कि इसकी तकसीम जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाएंगे, जो नॉर्मल जो माल गनीमत के रूल्स थे लड़ाई के बाद वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये कि ज़ाहिर है उनकी इत्तबा आयत नंबर 7 में यही फरमाया कि माफ़ा अल्लाहु अला रसूली मिन आलिल कुराफ अलिल्लाहि वल रसूली वल ज़िल कुरबा वल यताम वल मसाकीन वबन सबील कै ला यकून दूलतम बैन अल अग़निया मिनकुम वमा आताकुम रसूल फ़खुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। कि भाई जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे वही होगा, जो वो कहें फ़खुज़ू उसे ले लो, उसमें बहस हील उज्जत की ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ से वमा नहा को मना फरमाएं तो उससे बाज़ आ जाओ, फिर इसमें बहस नहीं रहती। अगर हमें कोई चीज़ कैटेगोरिकली मुतवातिर सही अहदीस से पता चलती है कि उन्होंने कहा ये काम करो और हम वो फिर भी ना करें, या उन्होंने कोई इसी चीज़ से मना किया ऐसा ना करो और हम वो फिर भी करें, तो ये खुदा ना खास्ता डर लगता है, ये उस कैटेगरी में आ जाती है उनकी सॉर्ट ऑफ गैर इत्तबा की। बिल्कुल लास्ट रुकू में ईमान वालों को अल्लाह ने एक तरह से फिर से एक याद दिलाने की आयत नंबर 19 में कोशिश की कि तुम यहूद और नसारा की तरह नहीं हो जाना, जैसे उन्होंने अपने अंबिया की बातों को झुठलाया और फिर वो अल्लाह के मरदूद और ठुकराए हुए लोग हो गए। और आगे आयत नंबर 21 एक ख़ास तौर से इसमें नोट वर्दी वो ये नज़र आता है, लव अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरअईतहू खाशिअ मुतसद्दिअ मिन खशियतिल्लाह तिल्कल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर अल्लाह इस कुरान को पहाड़ पे भी नाजिल फरमा देते तो वो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये तो एक इंसान का अपना कमाल है कि वो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन इंसान समहा उसे उठा के और समझ रहा है कि वी आर टेकिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी फाइन, विच इज़ इन इट सेल्फ समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। बहरहाल आगे इसी तरह के अहकाम, और फिर हम जंप ऑन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुमतहिना पे, जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान में 60th सूरत है और नाजिल होने वाली 91 नंबर पे ये सूरत बनती है। इसमें ये मदनी ही सूरत है और इसमें 13 आयात और 2 रुकू मिलेंगे हमें। बिल्कुल आयत नंबर 10 में हम देखेंगे इज़ा जा को मुल मिनातु मुहाजरात फम्तहिनुहुन्ना। जब ये मोमिन औरतों की बात हो रही है कि जब आएँ तो इन्हें चेक करके, एंड देन इसके ये बाद में आएगा आगे वाक़या कि जो हिजरत करने वाली औरतें उनके बारे में हुक्म, तो इससे मुराद अभी आगे हमें आएगी। इसकी वजह ये थी कि حضرت حاطب بن ابی بتعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئے، جنہوں نے مشرکین مکہ کو خفیہ طور سے مکہ کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روانگی کی اطلاع دی تھی اصل میں. تو فرسٹ جو آیت ہے اس میں اس بات کی طرف ذکر ہے، والذی اخرج الذین کب، کہ کس طرح، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودتی الی آخر الایت. پہلی آیت میں ایکچوئل تذکرہ فرسٹ آف آل تو ان کا چلتا ہے، حضرت حاطب بن ابی بتا کا رضی اللہ عنہ کا. خیر نہیں ہو، یہ ایک بدری اور بہت مخلص صحابی تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے کسی کا احسان تھا ان پہ، وہ احسان اتارنے کے لیے کہ اس دنیا میں ہی یہ میرے سے اپنا ریٹرن واپس لے لے. اور اینی ہاؤ ظاہر ہے ہی واز فورگیون، اور بالکل کیٹیگوریکلی اللہ نے خود ہی ظاہر ہے ایک کسی وجہ سے تھا، لیکن ان کا ذکر آیا بہرحال کہ غلطی سے بھی کوشش ایسی نہیں کریں. لیکن انہیں دوست جو مشرکین ہیں خاص طور سے اسی لیے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ انہیں دوست نہ بنایا جائے. اور آگے ہم اگر دیکھتے ہیں اس میں آیت نمبر 4 میں بھی فری، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ بریفلی آتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے مشرکوں کو دعوت دی. اور آیت نمبر 7 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہمیں بشارت یعنی کہ خوشخبری سارٹ آف یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے جو اللہ نے ہمیں دی. وہ اس طرح کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرہوا وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ بھائی سون اللہ تمہارے دشمنوں کے درمیان بھی محبت پیدا کر دے گا. کیونکہ اس واقعے میں یہ تھا نا، وہ ان کے دشمن تھے لیکن بہرحال تھے تو رشتہ دار اور ان کے معاملات تھے ان کے ساتھ، تو اللہ ان قریب ان کو بھی ایک تو اللہ نے بشارت دی کہ مسلمان کر دے گا، بہت سے اور ہو گئے ظاہر ہے، اور پھر ایک معاملے کی اللہ نے اجازت دی کہ تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی پیس ٹریٹی کا کوئی اگریمنٹ توڑ کے لڑنا جھگڑنا ہو، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. مین جو وجہ تھی ممتحنہ کی وہ یہ تھی کہ جو مہاجر عورتیں ہیں، یعنی کہ خاص طور سے ایک یہ واقعہ ہوا تھا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دشمن تھا عقبہ بن معیط، اس کی بیٹی تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت فرما کے مدینہ آ گئیں، تو اس کا جو والد تھا ظاہر ہے وہ آ گیا، یہ خود ایک دشمن تھا، ہی ہیڈ ہیٹریڈ اینڈ بکس فار نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اینڈ ہی کیم کہ بھائی وہ معاہدہ جو حدیبیہ کا ہمارا جو ٹریٹمنٹ ٹریٹی تھا پیس ٹریٹی، وہ میں اس کے مطابق آپ انہیں ہمیں واپس کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیٹ کہ وہ ٹریٹی ہمارا تھا مردوں کے بارے میں، خواتین عورتوں کے بارے میں وہ ٹریٹی نہیں تھا. تو اس کے بارے میں خاص طور سے یہاں ایک کیونکہ ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کو چیک کر لیا کرو. ممتحنہ جیسے بات چلی تھی آیت نمبر 10 میں، تو وہ اسی لیے تھا کہ انہیں اگر افتیار ٹرو پیور ہارٹ کی مومنہ عورتیں ہیں، مسلمان ہیں واقعی، اپنے ایمان اور جذبے سے ہجرت کر کے آئی ہیں، پھر انہیں مشرکوں کے واپس یعنی مکہ والوں کو واپس نہ دو. اور اگریمنٹ بھی جو حدیبیہ کا تھا دیٹ واز اباؤٹ مین ناٹ وومن. اور فائنلی بالکل لاسٹ کے قریب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 130 میں، تو ان مسلمانوں سے پھر دوبارہ خطاب کے ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، اور دے ول بی دا لوزرز ان دی اینڈ. تو ان کے بارے میں بات کر کے یعنی ان کی سے باتوں یا ان کے معاملات پر عمل کر کے گناہگار نہ بنو، ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے معاملات درست کرو. آگے سورہ صف سٹارٹ کرتے ہیں آرڈر کے اعتبار سے، جو کہ 61 نمبر پہ ہے اور نازل ہونے والی ہے 109 نمبر پہ سورت ہے قرآن پاک میں. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں. آیت نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ صفن کانہم بنیان مرصوص، یہ آتا ہے ذکر، تو اسی نسبت سے اسے سورہ صف کہا جاتا ہے. وہاں پہ صف کا ذکر ہے، یہ جو لڑنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ صف بنا کر سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 2 اور 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح اور جو پاکی ہے اس کی نعمتوں پر مسلمانوں کو اس کے بعد یعنی کہ سب ملنے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کریں، وہ بھی اللہ کے نافرمان نہ بنے سارٹ آف، یا اللہ کے اس کے جو حکم ہیں ان کی خلاف ورزیاں نہ کریں. और आगे आयत नंबर 4 में ज़ाहिर है फिर हम देख रहे हैं कि जिहाद की और लड़ने की, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ज़रूरी है दुनिया में, तो उसकी तरगीब दी जा रही है ना। उसके आगे हम देखते हैं फिर ख़ास तौर से अगर नोट वर्दी है आयत नंबर 5 में कि बनी इसराइल का तस्करा दोबारा, ये जो इस क़ाला मूसा लिक़ौम या क़ौम इलिमा तुज़ूननी क़द तअल्लमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ागू वज़ागल्लाहु क़ुलूबहिम क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमुल फ़ासिकीन, कि ये इनको हिदायत मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इनको इन्होंने नबी उन अपने रसूल यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, उन्होंने जब अमालका जो कौम सी उससे लड़ने के ख़िलाफ़ इनको कहा तो उन्होंने मना किया, तो उसका ज़िक्र आया कि तुम लोग ऐसे ज़ायरा नहीं करना। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का बिल्कुल नेक्स्ट आयत में ही जिक्र आ जाता है कि ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदय्या मिन तौराती व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मिहि अहमद फ़लम्मा जाओ बिलबीनात क़ालू हाज़ा सिहरुन मुबीन। या बार यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा बशारत दी, और ये वही वाहिद मकाम जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का नाम अहमद आया कि मेरे बाद जो रसूल आएगा फाइनली जिसकी इत्तबा करना वो होगा उसका नाम होगा अहमद, जो नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। तो इसी हवाले से यहाँ पे इनका नाम आया और उन्होंने बशारत भी दी, लेकिन ऑफकोर्स बनू इसराइल ने उनकी भी नहीं मानी। और आगे आयत नंबर 9 में एक नोट वर्दी चीज़ जो नज़र आती है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलव करिहल मुशरिकून, के जितना भी ये लोग अपनी साजिशें प्लानिंग्स करते रहें करने वाले, लेकिन एक दिन आएगा कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया पर सब कौमों पर गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए कहा लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, हर दीन के ऊपर एक दिन आएगा कि इस्लाम गालिब होगा। इसके बाद आगे सूरह जुमा स्टार्ट करते हैं जो कि ऑर्डर के एतबार से 62 बनती है और नाजिल होने वाली 110 नंबर पे आया ये सूरत नाजिल हुई कुरान पाक में। और मदनी सूरत है, इसमें 11 आयात और 2 रुकू हैं। बिल्कुल हम देखेंगे इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, जो जुमे की आयत आती है इसी नस्बत से इसे सूरह जुमा कहा जाता है। और शुरू में अगर देखें तो पहले तो एक बिअसत के जो औसाफ़ हैं यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की आने के, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ीज़ ज़लालिम मुबीन, के नबी अलैहिस्सलाम के आने का मकसद क्या था। ये आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बताया कि उन्हें इसलिए भेजा गया, सबसे पहले तो आपको कुरान पढ़ना सिखाएं, क्योंकि तिलावत इसकी, इवन दो अरब थी लेकिन इसकी तिलावत का अपना एक तरीका है। बाद लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ खुद आ सकती है, लेकिन यहाँ ये कुरान बताता है कि नबी अलैहिस्सलाम आए इनको सबसे पहले तिलावत सिखाने, फिर किताब जो इल्म है वो सिखाने, और साथ साथ इनका तस्किया करने, इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनके रूह की जो इनकी अंदर इनर बातें हैं उसकी बीमारियों का इलाज करने, और फिर इन्हें हिकमत सिखाने कि आगे इसको फैलाना कैसे है, इसकी दावत कैसे देनी है। और आगे आयत नंबर 5 में यहूद का तस्करा ख़ास तौर से कि इनको गधों से सॉर्ट ऑफ तशबीह दी जा रही है, डोंकीज़ दिया लाइक डोंकीज़, बिकॉज इन पे जितनी भारी मुकद्दस किताबों का बोझ हमने डाला हुआ है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सब तो ज्यूस की बुक्स हैं, सारे बनू इसराइल के पैगंबर हैं, लेकिन ये उन डोंकीज़ की तरह हैं जो इसके बोझ को सही तरह नहीं उठाते। और आयत नंबर 6 में ख़ास तौर से एक कॉन्सेप्ट हमारे आता है मुबाहला, यानी कि अगर तुम उनसे कहा गया कि इन मुबाहला पे आ जाओ, यानी मुबाहला मींस कि आओ कम ऑन लेट्स सिट टुगेदर एंड विश फॉर डेथ, यानी कि अगर हम सच्चे हैं तो चलो अल्लाह हमें मौत अता कर दे, इस पर हम अपना कर लेते हैं मुबाहला, अगर हम सच्चे नहीं हैं, अगर हम झूठे हैं सॉरी, तो अगर तुम वाकई औलिया अल्लाह हो तो तुम्हें किस बात का डर खौफ है, तुम ये कर लो मुबाहला, तुम्हें तो डर नहीं है, अगर तुम सच्चे ही हो तो मरने के बाद तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिर है मौत की आरज़ू भी नहीं करते थे क्योंकि झूठे थे और इन्हें ख़ुद भी पता था कि हम झूठे हैं। तो एनी हाउ इनका जिक्र दोज लायर्स एंड देन मुनाफिकीन का भी इस तरह की खसलतें बहुत मिलने वाले कॉन्सेप्ट। तो लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि ख़ास तौर से इस जुमे, क्योंकि इस सूरत का नाम ही सूरह जुमा है, तो उसके ऊपर एम्फसिस आयत नंबर 9 में और आयत नंबर 10 में हमें मिलता है कि जब जुमे की नमाज़ खड़ी हो जाए तो तुम जुमे के लिए निकल जाओ, सब कारोबार लेन देन ख़रीदो फरोख्त सब बंद कर दो। इसीलिए फुकाए कराम फरमाते हैं कि उस जुमे के टाइम पर ख़रीदो फरोख्त सब बंद हो जानी चाहिए, मीनिंग कि कोई भी अगर सौदा वादा भी है तो उसे नहीं करना चाहिए, ये जुमे के आदाब के ख़िलाफ़ है। यहाँ के हम ख़त्म होते हैं करते हैं सूरह जुमा, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सूरह मुनाफिकून। سورہ جمعہ کے بعد یہاں سورہ منافقون جو ہے یہ دس از آرڈر کے اعتبار سے 63 نمبر پہ قرآن پاک میں, اور نازل ہونے والی یہ 104 نمبر پہ سورت بنتی ہے. اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہے, اور بالکل فرسٹ آیات میں جا کر منافقون بالکل کیٹیگورک لفظ آیا منافقون کا, ان کا خاص طور سے اس میں یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے ان کے بارے میں, تو اسی وجہ سے اسے سورہ منافقون کہا گیا. اور بے شک اللہ نے کلیئرلی اسی آیت میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو ان کی صفات کے بارے میں دے آر لائرز, دے آر ڈیسیورز, دے آر ڈسیپٹرز, یا جو بھی ان کے نام دھوکہ مکر فراڈ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ, تو ان کی صفات کچھ اللہ نے بیان کی. اور یہ بھی آگے ہمیں ملتا ہے جیسے آیت نمبر 4 پہ چلیں کہ ایون دو ظاہری اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے دے مے بھی بڑے باوقار ہوں, پرائڈ ہوں ان میں, ایک فصاحت بلاغت, دے نو ہاؤ ٹو ٹاک, دے مے بی اسموتھ ٹاکرز, دے مے بی فائن اوریٹرز اور بہت ہی ایکسٹرا انٹیلیجنٹ پیپل, بٹ دے آر بزدل, دے آر کاورڈز, دے آر ڈرپوک, دے آر اسٹوپڈ, اینی ہاؤ. تو ان کے بارے میں ساری ان کی نشانیاں اللہ نے ان کی صفات بیان کی, اور یہی کہ یہ آگے آیت نمبر 7-8 تک دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی تعریفیں کرتے ہیں, اور پیٹھ پیچھے ان کے خلاف آل سارٹس آف جو ڈسکسٹ ہے اور ان کے ڈرٹ تھروئنگ ہے, مرٹ سلنگنگ ہے, اس پہ اپنا دے کنٹینیو. اور یہ کہ ان کے بارے میں تم خاص طور سے مسلمانوں کو ایک سارٹ آف یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ غافل نہیں ہونا, موت سے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے میں لگ جاؤ. اور یہ جو منافقین, جس میں خاص طور سے عبداللہ بن ابی کا نام آتا ہے, جس کی حرکتوں کا بہت ساری تفاسیر کی کتابوں میں اور روایات میں ہمیں ذکر ملتا ہے. یعنی ہاں اس سورت کے بعد سورہ تغامن سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ آرڈر کے اعتبار سے 64 اور نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی 108 نمبر پہ نازل ہوئی. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس میں آگے آیت نمبر 9 میں ہم دیکھیں گے ذالک یوم التغابن کا لفظ آتا ہے, اسی نسبت سے اسی وجہ سے اسے سورہ تغابن کہتے ہیں. تغابن ان عربی مینز نقصان اٹھانے کا دن, یعنی کہ یوم اس سے یوم الجزا تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ اینی ہاؤ جس دن نقصان اٹھائے گا اٹھاتا ہے کوئی, اس دن کو تغابن کہتے ہیں. اسی وجہ سے سورہ تغابن کہا جاتا ہے. اوبیسلی اس میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور وہ یہی کہ فرسٹ تو شروع میں آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ کیٹیگوریکلی سب سے پہلے تو دو ڈفرینٹ سارٹس آف گروپس, اگین ایک وہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں. تو ان کے ذکر کے بعد آگے ورس نمبر 5-6 کے اندر ہم دیکھتے ہیں پچھلی قوموں کا دوبارہ ایک تذکرہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہی کہ انہوں نے اپنے کیونکہ رسولوں کی ظاہر تکذیب کی تھی, انہیں جھٹلایا تھا, تو جس طرح انہیں سزا ہوئی تم لوگ ایسا نہ کرنا, اپنے رسولوں کی اتباع کرنا اور ان کے آرڈرز کو فالو کرنا, تو ایک نصیحت کے لیے. اور پھر آگے کیونکہ اس قیامت کا جو دن ہے اسے کیونکہ یوم التغابن بھی کہا گیا ہے, جس دن نقصان اور خسارے کا دن ہوگا, ظاہر ہے بہت سارے لوگ جس کی جو اپنی مقامات پہ آتی رہتی ہیں اس کی ہولناکیاں اور اس کی جو ساری آل سارٹس آف جو ڈرانے والی چیزیں ہیں, تو اس دن کیونکہ بہت سے لوگ خسارے میں ہوں گے اور نقصان میں ہوں گے, انہی کے ذکر کی وجہ سے یہاں پہ اسے سورہ تغابن کہا گیا. اور ایون جو نیک اور سب سے بڑا کوئی مومن بھی ہوگا وہ اس دن یہی سوچ رہا ہوگا کہ کاش میں نے اور زیادہ عبادت کی ہوتی, اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی, اور اطاعت اور عبادت میں اپنا وقت گزارا ہوتا. اور فائنلی ورس نمبر 14 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور سے انما ازواجکم واولادکم عدو لکم, یعنی کہ جو تمہارا بیویاں ہیں اور تمہارے بچے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم ان سے بچو, وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم, کہ ہاں اگرچہ ظاہر ہے حکمت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بیلنس لائف سٹائل ضروری ہوتا ہے, لیکن آف کورس یہ بار بار تمہیں اللہ کے راستے سے اور اس سے روکتے ہیں, اور بظاہر ظاہر ہے کبھی فلاں کسی ایکس وائی زی ضرورت کی وجہ سے, کبھی کسی کی وجہ سے, کبھی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, نارملی یہی وہ وجہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے, چاہے وہ فار ان آل گڈ فیتھ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار وہ لائن جو ڈرا ہونی چاہیے اس کو کراس بھی کبھی کبھار اسی وجہ سے ہو جاتی ہے. इसके बाद सूरह तलाक़ ख़ास तौर से नोटवर्दी है, जो ऑर्डर के एतबार से 65th नंबर पे और नाजिल होने वाली 99th नंबर पे सूरत है कुरान पाक की। मदनी सूरत है और इसमें 12 आयात और 2 रुकू हैं। बिल्कुल फर्स्ट आयत में हमने देखा, या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़तुमुन्निसा फ़तल्लिकुहुन्ना लिद्दतिहिन्ना वाहसुल इद्दा इला आखिरिल आयत। तल्लक़तुमुन्निसा का लफ्ज़ है कि उनको तलाक़ देने के मामलात इसके अंदर क्योंकि ज़िक्र है, तो इसी वजह से इसे सूरह तलाक़ कहा जाता है। और जैसे मदनी सूरतों का एक रिवाज हमने देखा था सूरह बकरा में, आले इमरान और सूरह निसा वगैरह में, कि जो शरी अहकाम होते हैं इनमें ख़ास तौर से इन्हें एम्पल मिलते हैं, दैट्स वाई इस इधर भी मदनी होने की मुनासबत से लगता है गालबन इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एम्फसिस दोबारा औरतों के मसाइल खसूसन, क्योंकि जो तलाक़ औरत को किसी हो गई लेकिन उसके बाद भी उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसके जो जिसको अरबी में नफ़का और इद्दत और जो उसका सुकना कहते हैं, उसको रहने के लिए एक जगह और सारे जो हकूक़ होते हैं उसके, इस्लाम ने मुतय्यन कर दिए। और यहाँ पे उनका भी उनका ही ज़िक्र आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म की जो औरतें कोई किसी को अगर किसी वजह से, ज़ाहिर है अल्लाह के पसंद तो नहीं लेकिन किसी ना किसी वजह से कभी मुमकिन है कि किसी दो एक मियाँ बीवी के दरमियान ना बने, तो अगर वो तलाक़ दे भी तो अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है, तो उनकी फिर इद्दत वगैरह की भाई कितनी होनी चाहिए उसके ज़िक्र मिलता है कि एक बूढ़ी औरत है तो जिसे हैज़ ना आता हो, फिर या एक सगीरा है यानी कि छोटी बच्ची हो, या एक हामला है जिसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तलाक हो गई हो, तो इसके जो नफका और सुकना मीनिंग के जो इसका रहने की जगह कि कितने इद्दत रहेगी, किसके घर में रहेगी, फैज़ा बलगना जला उन्ना फमसिकु उन्ना बेमारूफ़ और फ़ारिक उन्ना बेमारूफ़, अगर उसके बाद ना बने तो फिर भी रुजू ना हो सके तो बहरहाल अलहदगी इख्तियार कर ले। तो इसके सारे हमें अहकाम मिलते हैं, लेकिन नोटवर्दी बात कि इसमें 4 ख़ास तौर से दफ़ा जब भी ये आता है तो तकवे का ज़िक्र आता है इनके मामलात में, जो पहली दफ़ा का तुम्हारा रब अल्लाह से डरो जो कि तुम्हारा रब है, फिर आगे दोबारा कि वो तुम्हें अल्लाह से डरो तुम्हें निकलने का रास्ता दिखा देगा, फिर सहूलत पैदा कर देगा, गुनाह दूर कर देगा, तो चारों मरतबा अल्लाह से डरने का तकवा इख्तियार करने का ख़ास तौर से एक इस सब के मामलात में, चाहे मियाँ बीवी की बनी ना बनी, लेकिन अल्लाह से डरते रहते हुए जब भी काम होगा तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह की रहमत और बरकत होगी और किसी बड़े नुकसान से उससे बचा ही जाएगा, मज़ीद नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। और आगे ये कि आयत नंबर 8 से 10 में हम देखते हैं जो सरकशी और इबरत उसकी अजाब के बारे में उन उम्मतों का दोबारा ज़िक्र मिलता है जिन्हें जिन्होंने रिबेल किया अल्लाह के रसूलों के ख़िलाफ़ और उन्हें झूठा कहा और उनको झुठलाया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनका जो वजह से उन पर अल्लाह के अजाब आए और इसी वजह से उन सज़ा के वो मुस्तहिक हुए। इसके बाद इस बारे की लास्ट सूरत को हम बिगिन करें अगर, तो सूरह तहरीम ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 66th नंबर पर और नाजिल होने के एतबार से ये 107 नंबर पे नाजिल हुई। इसमें 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। मेन फर्स्ट आयत में अगर हम देखें, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमुमा अहल्लल्लाहु लक, तो एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है कि आप अपने ऊपर वो चीज़ क्यों आराम करते हैं जो आपके लिए हमने हलाल कर दी। मीनिंग के हुआ ये था इसके पीछे कि कुछ आपकी अजवाज मुतहरात में से कुछ कोई स्मेल का कोई वाकया डिफरेंट रिवायत में ज़िक्र आता है कि कोई कंप्लेन की उन्होंने, तो फिर बाद में जाके कोई आपस में एक म्यूचुअली कुछ थोड़ी अजवाज मुतहरात के बीच में कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर अपनी अजवाज के पास जाना हराम समझ कर लिया, और इसका फिर बाद में इल्म हुआ और उन्हें ज़ाहिर है जब सबको पता चला तो उन्हें बहुत ही नबी अलैहिस्सलाम को सदमा भी हुआ, तो अल्लाह ने उनकी एक सॉर्ट ऑफ तसल्ली के लिए भी आयात में कि आप अपने लिए हराम ना करें, ये तो जिसे हमने हलाल कर दिया। और फिर उनको ख़ास तौर से तंबीह की गई कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलाक भी दे दी कुछ भी है तो उनका कुछ नहीं जाता, इनके लिए हम और बीवियाँ ऐसी और औरतें ला के ले आएंगे, नुकसान तुम्हें ही होगा। तो ज़ाहिर है उनको एक ख़ास सॉर्ट ऑफ तरबियत के अंदाज़ में बात चलती है, और ख़ुसूसन फिर एक जनरल उमूमी सब के लिए जो आयत नंबर 6 में देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतु ग़िलाज़ुन शदीदुल्ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। एक तो ये कि जो फरिश्तों की बात आई कि या फलूना मा युमरून, वही करते हैं जिसका उनको ऑर्डर होता है अल्लाह की तरफ से। और यहाँ उनके अजाब की बात चल रही है, वो किसको देते हैं, ये बात इसीलिए हुई कि कू अनफुसकों, अपने आप को और अहली को, अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को आग से बचाओ। ये वो आग मलाइका जिस जो डालते हैं जहन्नमियों पर, उससे बचाने की एक बात ख़ास तौर से। तो हर मुसलमान मर्द मोमिन या मेल ख़ास तौर से उसे ऑर्डर दिया जा रहा है कि समटाइम्स अगर जो बुराई देख रहे हो तो उससे अपने आप को ही नहीं बचाओ, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को भी उससे दूर करो, उससे बचाओ। और सूरत के बिल्कुल एंड में दो हमें मिसालें मिलती हैं, एग्जाम्पल्स इस तरह से कह लें कि आयत नंबर 10 में, टू बी प्रिसाइज, ज़रब अल्लाह मसल्लज़ीन कफ़रु इमरात नूह व इमरात लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़खानताहुमा फ़लम युग़नी अन्हुमा मिन अल्लाह शैयन वक़ील लदख़ुलन्नार मअ अद्दाख़िलीन, एक मिसाल। और दूसरी मिसाल आयत नंबर 11 में, वज़रब अल्लाह मसल्लज़ीन आमनु इमरअता फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। एक तरफ तो हज़रत पहले आयत नंबर 10 में सोले और नू और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का तस्करा, कि ये ख़ुद तो नेक सोले अल्लाह के नबी थे लेकिन इनकी बीवियाँ अजाब की मुस्तहिक बनी एंड में और वो गरक हुई। और दूसरी तरफ मिसाल दी फ़िरौन की और उसकी बीवी, बीवी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनके बारे में आता है रिवायात में कि वो आखरत में नबी अलैहिस्सलाम की ही अजवाज मुतहरात में से होंगी। उन्हें यहाँ तक, क्योंकि उनकी कुर्बानी थी, उस उनका जुल्म और ज़्यादती के बारे में बाज़ रिवायात में मिलता भी है, किस तरह से फ़िरौन ने उनकी पूरी स्किन को बॉडी से अलग करके, उनकी बिल्कुल एक एक पीस यानी बोटी बोटी करके, इन द सॉफ्ट अस्तगफिरुल्लाह, और किस तरह से उन्हें उन्हें शहीद किया। एंड इन दी एंड शी डेंट गिव अप, शी डेंट लूज़ फेथ, और आखिर में उन्होंने दुआ की, कौलत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन, ए अल्लाह मेरे लिए अपने पास एक घर बना, फिल जन्ना जन्नत में, और मुझे इस फिरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा। और अल्लाह ने ऐसे ही किया और ये खुशखबरी उन्हें मिली कि आखिरत में वो नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज मुतहरात में से होंगी, एक रिवायत में आ गया। और ये उन्हें, उनका इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह सुबहाना व ताला ने यहाँ पे बयान फरमाया। तो इसी से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ख़ुद बहुत बड़ा वलीअल्लाह हो तो उसकी औलाद भी बहुत बड़ी वलीअल्लाह बने, या ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा अगर जाबिर फ़िरौन हो तो उसकी बीवी या उसकी जो दूसरे घर वाले हैं वो भी उसी की तरह ज़ालिम और जाबिर हों। वो हो सकता है कि वो आसी बीवी आसिया की तरह हों। बहरहाल इंसान को डरते रहना चाहिए और अल्लाह से नसीहत और हिदायत और इस्तकामत और आफ़ियत की ख़ास तौर से दुआ मांगते रहना चाहिए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।